नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये पांडवों को चिढ़ाने के लिए दुर्योधन द्वैत वन में गया। द्रौपदी को चिढ़ाने के लिए अपनी स्त्रियों को खूब सजा धजा कर लेकर के गया। इंद्र को पता चला तो इंद्र ने चित्रसेन गंधर्व को भेजा। चित्रसेन गंधर्व ने युद्ध किया, दुर्योधन को पकड़ करके ले गए। गंधर्वों के युद्ध में कर्ण कहीं का कहीं चला गया और उसके बाद दुर्योधन के मंत्रियों ने पांडवों से आकर निवेदन किया। भीम अर्जुन वगैरह सब गए, दुर्योधन को छुड़ा दिया। छुड़ाया भी ऐसे, चित्रसेन युधिष्ठिर के सामने लेकर आया। युधिष्ठिर के सामने नीचा मुख कर लिया, भीमसेन भी वहीं छोड़ दिया। दुर्योधन प्रायोपवेश के लिए बैठने लगा, कर्ण आदि ने मना किया। उसके बाद वो हस्तिनापुर आया। पितामह भीष्म ने बहुत उसको डांटा। उसने फिर युधिष्ठिर के समान राजसूय यज्ञ तो नहीं किया, वैष्णव यज्ञ किया। कर्ण दिग्विजय के लिए गया, खूब शासन दान वगैरह लेके कर वगैरह लेकर आया और फिर वैष्णव यज्ञ किया। इधर पांडव काम्यक वन में पहुंच गए। इतनी कथा हो गई। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, इस प्रकार वन में रहते हुए महात्मा पांडवों के 11 वर्ष बड़े कष्ट से बीते। वे फल फूल खाकर रहते थे, सुख भोगने योग्य होकर भी महान दुख सहते थे। वे सब के सब महापुरुष थे, इसलिए यह सोचकर कि यह हमारे कष्ट का समय है, इसे धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए, घबराते नहीं थे। राजा युधिष्ठिर सोचते, हमारे भाइयों पर जो ये महान दुख आ गया है, ये मेरी ही करनी का फल है। युधिष्ठिर जी बोल सोचते, ये सब मेरे अपराध से कष्ट भोग रहे हैं। भीम को, अर्जुन को, नकुल, सहदेव को, द्रौपदी को कष्ट में देखते तो उनको रात रात नींदे नहीं आती थी, हृदय में कांटे से चुभते थे। अर्जुन का मुख देखते तो उनके आंखों में पानी आ जाता था। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी भी युधिष्ठिर का मुंह देखकर सारा कष्ट धैर्यपूर्वक सह लेते थे। उनकी चेष्टाओं में बड़ा उत्साह रहता था। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी पांडवों को देखने के लिए वहां आए। बड़ा सत्कार किया पांडवों ने, आसन पर बैठाया, भक्ति भाव से प्रणाम किया, फिर स्वयं भी सेवा के विचार से विनयपूर्वक उनके पास बैठ गए। अपने पौत्रों को वनवास के कष्ट से दुर्बल और जंगली फल फूल खाकर जीवन निर्वाह करते देख व्यास जी की आंखों में आंसू भर आए। गदगद कंठ से बोले, महाबाहु युधिष्ठिर सुनो, इस संसार में तपस्या के बिना किसी को भी उच्च कोटि का सुख नहीं मिलता है। तप से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तप से महत पद यानी ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कहां तक कहें, तुम थोड़े में इतना जान लो कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तपस्या से न मिले। सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, देवता और अतिथियों को देकर अन्नादि ग्रहण करना, इंद्रियों और मन को वश में रखना, दूसरों के दोष न देखना, किसी जीव की हिंसा न करना, बाहर और भीतर की पवित्रता रखना, ये सद्गुण मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। इनसे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है। जो लोग इन धर्मों का पालन न कर अधर्म में रुचि रखने वाले होते हैं, उन्हें पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। उन कष्टदायक योनियों में जन्म लेकर भी कभी सुख नहीं पाते। इस लोक में जो कुछ कर्म किया जाता है उसका फल परलोक में भोगना पड़ता है। ये मानव शरीर कर्म का फल भोगने का साधन नहीं है, इसलिए शरीर से तपस्या नियम आदि का पालन करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण या अतिथि आ जाए तो प्रसन्नता पूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार उसे दान देना चाहिए, विधिवत प्रणाम करना चाहिए। मन में कभी मत्सर द्वेष, मत्सर माने द्वेष का स्थान नहीं देना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे महामुने, दान और तपस्या में किसका अधिक फल है और दोनों में कौन सा कठिन है? व्यास जी ने कहा, राजन, दान से बढ़कर कठिन कार्य इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। लोगों का धन में बहुत लोभ रहता है, धन बड़े कष्ट से मिलता है। धन के लिए उत्साह रखने वाले लोग अपने प्राणों का मोह छोड़कर धन के लिए जंगलों में भटकने के लिए तैयार, समुद्र में गोता लगाने के लिए तैयार, कितना कितना कष्ट सहते हैं। कई लोग तो धन की इच्छा से दूसरों के गुलाम हो जाते हैं। कोई खेती करते हैं, कोई गौ पालते हैं, कष्ट सहकर भी कमाए हुए धन का त्याग करना बड़ा कठिन है। अतः दान से दुष्कर कोई कार्य नहीं, इसीलिए मैं दान को सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। यदि न्याय से धन कमाया गया हो और उत्तम देश, काल और पात्रता का विचार करके उसका दान किया जाए तो उसका और भी ज्यादा महत्व हो जाता है। अन्यायपूर्वक प्राप्त किए हुए धन से जो दान धर्म किया जाता है वह कर्ता की महान भय से रक्षा नहीं करता। यदि अच्छे समय पर शुद्ध भाव से सत्पात्र को थोड़ा भी दान दिया जाए तो परलोक में उसका अनंत फल होता है। पुराने जमाने के लोग एक मुदगल ऋषि की कथा सुनाते हैं। मुदगल ऋषि ने एक द्रोण धान का दान करके महान फल प्राप्त किया। द्रोण होता है 15.5 शेर के लगभग वजन होता है, उसको द्रोण कहते हैं, 15.5 शेर। तो मुदगल ऋषि ने 15.5 शेर धान का दान दिया था और उसको बड़ा विचित्र फल मिला। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, महात्मा मुदगल ने एक द्रोण धान का दान किसे दिया, किस विधि से दिया और वो कैसे दिया गया ये सब मुझे बताइए। व्यास जी बोले कि राजन, कुरुक्षेत्र में एक मुदगल नाम के ऋषि रहते थे, बड़े धर्मात्मा, जितेंद्री, सदा सत्य बोलते, किसी की निंदा नहीं करते, अतिथियों की सेवा का उन्होंने व्रत ही ले रखा था, बड़े कर्मनिष्ठ और तपस्वी महात्मा थे, शील और उच्च वृत्ति से जीव का चलाते थे। 15 दिनों में एक द्रोण धान इकट्ठा कर लेते, उसी से इष्टीकृत नामक यज्ञ करते हैं और 15वें दिन प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा को दर्श पौर्णमास याग किया करते थे। यज्ञों में देवता और अतिथियों को देने से जो अन्न बचता उसी से परिवार सहित निर्वाह करते थे। घर में स्त्री थी, पुत्र था और वे स्वयं थे। तीनों एक पक्ष में एक ही दिन भोजन करते। महाराज, उनका ऐसा प्रभाव था कि प्रत्येक पर्व के दिन देवराज इंद्र देवताओं सहित उनके यज्ञ में उपस्थित होकर अपना भाग लेते थे। इस प्रकार मुनि वृत्ति से रहना और प्रसन्न चित्त से अतिथियों को अन्न देना उनका जीवन का व्रत था। किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते थे, बड़े शुद्ध भाव से दान करते थे, इसलिए वह एक द्रोण अन्न 15 दिन के भीतर कभी घटता ही नहीं था, बढ़ता रहता था। दरवाजे पर अतिथि देखकर उस अन्न में अवश्य वृद्धि हो जाती थी। सैकड़ों ब्राह्मण और विद्वान उनमें से भोजन पाते पर वो कमी नहीं आती। मुदगल मुनि की इस व्रत की ख्याति बहुत दूर तक फैल गई। एक दिन उनकी कीर्ति कथा दुर्वासा मुनि के कानों में पड़ गई। जाने दुर्वासा को क्या सूझी, वे एकदम नंग धड़ंग पागलों का सा वेश बनाए, मुंड मुंडाए, कटुवचन कहते वहां आ पहुंचे और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, ए विप्रवर, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहां आया हूं। मुदगल ने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूं, पाद्य अर्घ्य आचमनी आदि पूजन सामग्री से उनका सत्कार किया, बड़ी श्रद्धा से भोजन परोसा गया, श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न बड़ा सरस लगा, मुनि भूखे तो थे, सब खा गए। मुदगल उन्हें बराबर अन्न देते रहे और वे हड़प करते चले गए। अंत में जब उठने लगे तो जो कुछ झूठा अन्न बचा था उसे अपने शरीर में लपेट लिया और जिधर से आए उधर ही निकल गए। इसी प्रकार दूसरे पर्व पर भी वही आए और भोजन करके चले गए। मुदगल मुनि को परिवार सहित भूखा रहना पड़ा। फिर वे अन्न के दानों का संग्रह करने लगे। स्त्री और पुत्र ने भी उनका साथ दिया। भूख से उनके मन में तनिक भी विकार या खेद नहीं हुआ, क्रोध ईर्ष्या और अनादर का भाव भी नहीं हुआ, वे ज्यों के त्यों शांत बने रहे। लेकिन इधर पर्व आने पर दुर्वासा मुनि फिर उपस्थित हो गए। अब 15 दिन में एक बार तो भोजन करें और उस भोजन पर ये दुर्वासा ऋषि आ बैठे, बिचारों की भूखों की क्या दशा हुई होगी। 6 पर्व उन्होंने निकाल दिए किंतु फिर भी भूखे मुदगल के मन में कोई विकार नहीं आया। जब भी देखो चित्त शांत और निर्मल। ऐसा करते आखिर दुर्वासा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मुदगल से कहा, मुने, इस संसार में तुम्हारे समान कोई दाता नहीं है, ईर्ष्या तो तुमको छू तक नहीं गई, भूख बड़े बड़े लोगों को धार्मिक विचारों से हिला दिया करती है, उनका धैर्य ले लेती है, जीभ तो रस नहीं ठहरी ना, ये रस का आस्वादन किए बिना रह नहीं सकती है। मनुष्य का चित्त और कहीं खींचे न खींचे, परंतु रसना की ओर तो खींचता ही है, क्योंकि भोजन से प्राणों की रक्षा होती है। मन तो इतना चंचल है कि उसको वश में करना बहुत कठिन हो जाता है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को ही तपस्या कहा जाता है। इन इंद्रियों को भूखा रखकर कष्ट सहकर बड़े परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन को शुद्ध हृदय से दान कर देना कितना कठिन है, यह आपने करके दिखाया। तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हुआ हूं। तुम्हारा अपने ऊपर अनुग्रह मानता हूं। इंद्रिय विजय, धैर्य, दान, शम, दम, दया, सत्य, धर्म सब तुम में है। तुमने अपने शुभ कर्मों से सभी लोगों को जीत लिया, परम पद प्राप्त कर लिया। देवता भी तुम्हारे दान की महिमा गागा कर इसकी सर्वत्र घोषणा करते हैं। दुर्वासा मुनि इस प्रकार बातें कहे जा रहे थे कि देवताओं का दूत एक विमान के साथ वहां पहुंचा। बड़ा विचित्र विमान था। उस विमान में कोई घोड़े नहीं थे, उस विमान में एक दिव्य हंस और सारस जुटा हुआ था और उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। बड़ा विचित्र, इच्छानुसार चलने वाला। देवदूत ने महर्षि मुद्गल से कहा, मुने यह विमान आपको शुभ कर्म से प्राप्त हुआ है, आप इस पर बैठिए, अब आप सिद्ध हो चुके हैं। ये सुनकर महर्षि मुद्गल ने कहा, देवदूत सत्पुरुषों में सात पग एक साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है। उस मैत्री को सामने रखकर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, उत्तर में जो सत्य और हितकर बात हो जरूर बताइएगा। आपकी बात सुनकर फिर अपना कर्तव्य निश्चित करूंगा कि मैं कहीं जाऊं कि नहीं जाऊं। प्रश्न यह है, स्वर्ग में क्या सुख है और क्या दोष है? देवदूत बोले, महर्षि मुद्गल आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है। जिसको दूसरे लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं, वह स्वर्ग का उत्तम सुख आपके चरणों में लौट रहा है, फिर भी आप अनजान से बनकर उसके संबंध में विचार करते हैं, पूछते हैं ये कैसा है। फिर भी मैं आपको बताता हूं, स्वर्ग यहां से बहुत ऊपर का लोक है, उसको स्वर्गलोक भी कहते हैं। बड़े उत्तम मार्ग से यहां जाना जाता है, जाना होता है। वहां के लोग सदा विमानों पर विचरण करते हैं। जिसने तप, दान या महान यज्ञ नहीं किया अथवा जो असत्यवादी या नास्तिक है, उसका उस लोक में प्रवेश भी नहीं होता। जो धर्मात्मा, जितेंद्रिय, समदम से संपन्न और द्वेष रहित है तथा जिन्होंने दान धर्म का पालन किया है, वे ही उस लोक में जाते हैं। इसके सिवा वे शूरवीर भी, जिनकी वीरता युद्ध में प्रमाणित हो गई है, स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं। वहां देवता, साध्य, विश्वेदेव, महर्षि, याम, धाम, गंधर्व, अप्सरा, उन सब के अलग अलग अनेकों लोग हैं, जो बड़े ही कीर्तिमान, इच्छानुसार प्राप्त होने वाले भोगों से संपन्न तथा तेजस्वी हैं। स्वर्ग के अंदर 33,000 योजन का एक बहुत ऊंचा पर्वत है, उसका नाम है सुमेरु गिरी। वह पर्वत सुवर्ण का है। उसके ऊपर देवताओं के नंदनवन आदि अनेकों सुंदर उद्यान हैं, जो पुण्यात्माओं के विहार के स्थान हैं। उस पर्वत पर रहने वाले को भूख प्यास नहीं लगती, मन में कभी उदासी नहीं आती, गर्मी और जाड़े का कष्ट नहीं होता, न कोई भय होता है। वहां कोई ऐसी अशुभ वस्तु नहीं होती जिसको देखकर घृणा हो। सब और मन को प्रसन्न करने वाली सुगंध छाया, शीतल मंद हवा चलती है, सब और मन और कानों को प्रिय लगने वाले शब्द सुनाई पड़ते हैं। वहां कभी शोक नहीं होता, किसी का रोना धोना नहीं होता, न बुढ़ापा आता है, न शरीर में थकावट आती है। स्वर्गवासियों के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता होती है, वे शरीर पुण्य कर्मों से प्राप्त करते हैं। माता पिता से उनकी उत्पत्ति नहीं होती, उनमें कभी पसीना नहीं निकलता, उनके शरीरों में दुर्गंध नहीं आती, उनके मलमूत्र नहीं होता, उनके कपड़े कभी मेले नहीं होते, वहां के दिव्य कुसुमों की मालाएं दिव्य सुगंध फैलाती रहती हैं, कुमलाती नहीं है। तुम्हारे सामने जो ये विमान है, ऐसे विमान वहां सबके पास होते हैं, वे किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, द्वेष नहीं मानते, बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। इन देवताओं के लोकों से ऊपर अनेकों दिव्य लोक हैं, इनमें सबसे ऊपर ब्रह्म लोक है, वहां अपने शुभ कर्मों से पवित्र ऋषि मुनि ही जाते हैं। वहां ऋभु नाम के देवता भी रहते हैं, जो स्वर्गवासी देवताओं के भी पूज्य होते हैं। देवता भी उनकी आराधना करते हैं। उनके लोक स्वयं प्रकाश हैं, तेजस्वी हैं, सब तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उन्हें लोकों के ऐश्वर्य के लिए मन में ईर्ष्या नहीं होती, आहुति पर उनकी जीविका निर्भर नहीं रहती, उन्हें अमृत पीने की भी आवश्यकता नहीं रहती। उनके देह दिव्य ज्योतिर्मय है, उनका कोई विशेष आकार नहीं होता, वे सुख स्वरूप होते हैं, सुख भोग की इच्छा उन्हें कभी नहीं होती। वे देवताओं के भी देवता और सनातन हैं, महाप्रलय के समय भी उनका नाश नहीं होता, फिर उनमें जरा और मृत्यु की आशंका ही नहीं करनी चाहिए। हर्ष प्रीति सुख दुख राग द्वेष इनका अत्यंत अभाव होता है। स्वर्ग के देवता और उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, ये परासिद्धि की अवस्था है, सबको सुलभ नहीं है। भोगों की इच्छा रखने वाले उस सिद्धि को नहीं पा सकते। ये जो 33 देवता हैं, उन्हीं के लोकों को मनीषी पुरुष उत्तम नियमों के आचरण से और विधि पूर्वक किए हुए दान से प्राप्त करते हैं। तुमने अपने दान के प्रभाव से वह सुखमयी सिद्धि प्राप्त की है, अपनी तपस्या के तेज से देदीप्यमान होकर अब उसका उपभोग करो। हे विप्र, यही स्वर्ग का सुख है, यही वहां के अनेकों प्रकार का लोक है। इस प्रकार अब तक तो मैंने स्वर्ग के गुण गिनाए, अब तुम स्वर्ग के दोष गिनो। स्वर्ग में अपने किए हुए कर्मों का फल भोगा जाता है। स्वर्ग में आदमी अपने नए कर्म नहीं बना सकता, स्वर्ग केवल भोग भूमि है, भोग की जगह है। वहां का भोग अपनी मूल पूंजी गंवाकर ही प्राप्त होता है। मेरी समझ में वहां का सबसे बड़ा दोष यह है कि एक न एक दिन वहां से पतन होता है। सुखद ऐश्वर्य का उपभोग करके उससे निम्न स्थान में गिरने वाले प्राणी को कितना असंतोष और कितनी वेदना होती है वही जान सकता है। पहले तो ऊंची जगह रखे, फिर भी नीचे रखे, उनके गले की माला कुमला जाती है, यही स्वर्ग से गिरने की सूचना है। ये देखते ही उनके मन में भय आ जाता है, अब गिरा अब गिरा अब गिरा। उन पर रजोगुण का प्रभाव पड़ता है, जब गिरने लगते उनकी चेतना लुप्त हो जाती है, सुध-बुध सब खो बैठते हैं। ब्रह्म लोक तक जितने लोग हैं सब में यह भय तो रहता ही है कि अब हमको यहां से छोड़ के जाना पड़ेगा। मुदगल बोले, हे देवदूत, स्वर्ग के आपने दोष बताए, क्या ऐसा भी लोक है जिसमें कोई दोष नहीं है? देवदूत ने, हां, ब्रह्मलोक से ऊपर विष्णु का परम धाम है, शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है, उसे परम पद कहते हैं। विषयी पुरुष तो वहां जा ही नहीं सकते, दंभ लोभ क्रोध मोह और द्रोह से युक्त पुरुष ही वहां पहुंचने के लिए यदि प्रयत्न करें नहीं जा सकते। वहां तो ममता अहंकार से रहित हो, द्वंद से परे रहने वाले हो, जितेंद्रिय हो, ध्यान में रहने वाले हो, वे महात्मा पुरुष जा सकते हैं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया, अब कृपा करके चलो, जल्दी चले, जल्दी जल्दी चले, देरी न करें। व्यास जी कहते हैं देवदूत की बात सुनकर मुद्गल ऋषि ने उस पर अपनी बुद्धि से कुछ विचार किया और फिर बोले, देवदूत आपको मेरा प्रणाम, आप प्रसन्नता से पधारिए, स्वर्ग का सुख भी देखा दुख भी देखा, परंतु मैं यहां स्वर्ग के बताए हुए सुख उससे भी बड़े सुख में बैठा हूं, आप पधारो, न तो मुझे स्वर्ग के सुख से कोई काम है और न मेरा कोई दुख से लेना देना है। ओह, थोड़े दिन के लिए स्वर्ग में चले जाएंगे, फिर वापस उससे नीचा गिरना पड़ेगा, दुख होगा, पश्चाताप होगा, क्या फायदा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। जहां जाकर व्यथा और शोक से पिंड छूट जाए, केवल उसी स्थान का मैं अनुसंधान करूंगा। देवदूत को विदा कर दिया और फिर वापस शिलोंस वृत्ति से निर्वाह करते रहे। उनकी दृष्टि में निंदा स्तुति, मिट्टी का ढेला और सुवर्ण सब एक जैसे थे। वे विशुद्ध ज्ञान योग का आश्रय ले नित्य ध्यान योग में परायण रहते थे। ध्यान से वैराग्य का बल पाकर उन्हें उत्तम बोध प्राप्त हुआ। इसलिए युधिष्ठिर, कभी तुम शोक मत करना, जो परिस्थिति आई है उसमें शोक मत करना। मनुष्य पर सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आते ही रहते हैं। रात्रि के बाद दिन, दिन के बाद रात आती है। कोई आदमी रोते हैं, वो जानते हैं कि रात आई है तो सुख सुबह भी होगा, सुबह आएगा तो रात तो आएगी। ऐसे ही अनुकूलता प्रतिकूलता जीवन में चलती रहती है। 13वें वर्ष के बाद तुम्हें अपने पिता पितामहों का राज्य अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे मन में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात कहकर व्यास जी तपस्या के लिए चले गए। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, जिस समय महात्मा पांडव वन में निवास कर ऋषि मुनियों के साथ विचित्र कथाएं सुनते हुए अपना समय आनंदपूर्वक व्यतीत कर रहे थे, उस समय दुशासन, कर्ण, शकुनि की राय से चलने वाला पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन, इन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, यह आप मुझे सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, महाराज, जब दुर्योधन ने सुना कि पांडव लोग तो वन में उसी प्रकार आनंद में रह रहे हैं, उनके चेहरे पर कोई दुख का शक भी नहीं है, शिकन भी नहीं है, जैसे नगर के निवासी रहा करते हैं, प्रसन्नता से ऐसे रहते हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ और दुर्योधन इतना उपकार पाकर के भी युधिष्ठिर की बुराई करने का विचार किया। मन उसका ईर्ष्या से जलने लगा। जब उसका चेहरा लोगों से सुनकर कि पांडव प्रसन्न है तो उसका चेहरा उदास होता, उस समय कर्ण, दुशासन और शकुनी की छल कपटमयी मंडली इकट्ठी होती और दुर्योधन से कहती, दुर्योधन कोई न कोई छल किया जाए, पांडवों को हानि पहुंचाने का कोई न कोई उपाय किया जाए। उसी समय में यशस्वी महर्षि दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां आ गए। परम क्रोधी दुर्वासा मुनि को घर पर पधारा देखकर दुर्योधन बहुत विनय दिखाता हुआ अपने भाइयों के साथ गया और नम्रतापूर्वक उन्होंने अतिथि सत्कार के लिए निमंत्रित किया। महाराज, हे ऋषिवर, ये दुर्योधन आपके चरणों में प्रणाम करता है और आपसे निवेदन करता है, आज आप यही भोजन कीजिएगा। बड़ी विधि से भोजन के लिए निवेदन किया। दास की भांति सेवा में खड़ा हो गया। दुर्वासा जी कई दिन वहां ठहरे, आलस्य छोड़कर दुर्योधन ने उनकी खूब सेवा की। कर्ण, दुशासन और शकुनी तीनों कह रहे हैं, दुर्योधन ऋषि मुनियों की सेवा तो पांडव भी करते हैं, परंतु आज तुमको दुर्वासा ऋषि मिल गए, इनसे लाभ ले लेना, इनके सामने कभी उद्दंडता मत करना, कभी पांडवों की बुराई मत करना, सदा पांडवों की प्रशंसा करना, ऊपर से एकदम ऐसे रहना जैसे पांडव इनको तुमको बहुत प्यारे हो, इनके शाप से सदा डरते रहना। इस मुनि का स्वभाव बड़ा विचित्र है। वो मुनि भी कहते, दुर्योधन मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी भोजन तैयार कराओ। ऐसा कहकर नहाने चले जाते और वहां से खूब देर के बाद लौटते। आने पर कहते, अरे भाई आज तो बिल्कुल भूख नहीं है, आज नहीं खाएंगे, कल खाएंगे। सारा भोजन यूं ही रह जाता, ये कुछ नहीं बोलना नहीं, ये कहें कि हम नहीं खाएंगे तो चुप, ये कहें कि भोजन करना है तो तैयार, हां में हां मिलाते जाओ। ये दुर्वासा ऋषि दुर्योधन तुम्हारा भाग्य है, इतने दिन तुम्हारे यहां ठहर गए। दुर्योधन ने ऐसा बर्ताव किया, उनके हर अटपटी क्रिया को प्रेम से सहा, कोई विकार नहीं आया, कोई क्रोध नहीं आया। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे, दुर्योधन मैं तुम्हारे इस निर्विकार सेवा से बड़ा खुश हो गया, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। दुर्वासा का ये कहना हुआ, दुर्योधन के मन में इतना आनंद आया जैसे उसको कोई नया जन्म मिल गया हो। मुनि बड़े संतुष्ट हो गए, क्या मांगू? तो कर्ण दुशासन शकुनी से सलाह करने गया। उनकी सलाह से सलाह थी कि हम क्या मांगे, तो उन्होंने सलाह दे दी। जब उसने मुनि के चरणों में आकर प्रणाम किया तो कहा, महाराज आप मेरी सेवा से संतुष्ट हो गए, अब मुझे मांगने की जरूरत ही क्या है, मुझे तो मिलना चाहिए वो मिल गया, आप मिल गए, फिर भी आपने आज्ञा दी है, मैं आपकी आज्ञा को नहीं टालता। हे दुर्वासा जी महाराज, आप परम ज्ञानी हैं, बड़े दयालु हैं, हमारे कुल में सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, वे मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए पूजनीय हैं, मेरे हृदय में उनके प्रति बड़ा स्थान है, वे इस समय अपने भाइयों के साथ वन में निवास करते हैं, बड़े गुणवान शीलवान और बड़े तपस्वी हैं, उनका जब मेरे से बिछोह हुआ है तब से मेरे मन में बड़ी अशांति रहती है, अब आप अपने शिष्यों के साथ जैसे हमारे यहां अतिथि हुए ऐसे उनके भी अतिथि होइए, जैसे हमको आपने दर्शन दिया कृपा की ऐसे उन पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं। और उस समय वो राजकुमारी द्रौपदी सब ब्राह्मणों को और पतियों को भोजन करा देवे, उस समय आप वहां पधारो ताकि आपका आपकी सेवा का उनको पूरा मौका मिले, क्योंकि उससे पहले वे अपने यज्ञ में रहते हैं, क्योंकि यज्ञ के बिना भोजन नहीं करते और ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करते, तो सबको भोजन करा देवे, उस समय में आप उनके पास जाओ, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। दुर्योधन तुम तो अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते हो, हम तुम पर बहुत पसंद हैं, तुम पर प्रेम होने के कारण हम ऐसा ही करेंगे। ये कहकर दुर्वासा जी जैसे आए थे वैसे चले गए। दुर्योधन कर्ण दुशासन शकुनी तीनों बड़ा ठाका मारकर हंसने लगे। अर्जुन जाओ इंद्र के पास, ले लो बड़े बड़े अस्त्र, देखते हैं तेरे अस्त्र क्या काम आते हैं। अब तो अपन ने बाजी मार ली दुर्योधन, बहुत बड़ा काम हो गया। ये ऋषि द्रौपदी के भोजन के बाद जाएगा, भूख मरेगा, ऐसा शाप देगा उनको, हमारा काम हो गया। बड़े प्रसन्न होकर कर्ण ने, शकुनी ने, दुशासन ने दुर्योधन से हाथ मिलाया, ठहाके मारने लगे। कर्ण ने कहा, दुर्योधन बड़े सौभाग्य की बात है, अब तो हमारा काम बन गया, न तो कोई शस्त्र चलाना पड़ा, न जुआ खेलना पड़ा, न कोई और काम, अब कुछ भी होगा हमारे पर कुछ नहीं आएगा, लोग कहेंगे कि भाई दुर्वासा जी ने श्राप दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, शत्रुओं का नाश हो गया, अब हस्तिनापुर तुम्हारा हो गया, सब राजा लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे, पांडव लोग दुख रूपी सागर में डूब गए और हम आनंद के सागर में मस्त हो गए, ऐसा बोलने लगे। इधर एक दिन दुर्वासा मुनि इस बात का पता लगाकर कि पांडव और द्रौपदी सभी लोग भोजन कर चुके होंगे, तब वे उनके पास 10,000 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के पास पहुंचे। राजा युधिष्ठिर अतिथि को आते देख भाइयों सहित आगे बढ़कर बड़ी नम्रता से प्रणाम किया, अपने यहां लाए, आसन पर बैठाया, विधिवत पूजा की और आतिथ्य के लिए निमंत्रण देते कहा, भगवान आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर शीघ्र आइए और आप प्रसाद पाइए, भोजन पाइए। मुनि भी शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि ये महाशय जंगलों में रहने वाला 10,000 शिष्यों सहित मेरा कैसे भोजन का प्रबंध करेगा। कुछ नहीं ध्यान दिया दुर्वासा जी ने, हां मरली हां ठीक, नाके आते और भोजन करेंगे। सारी मुनि मंडली जल में स्नान करके ध्यान लगाने लगी। इधर पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा बिचारा, क्या करूं, अन्न है ही नहीं, अन्न मिलने का कोई उपाय ध्यान में नहीं आया, बड़ी संकट में पड़ गई। तब वह मनी मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगी, कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकी नंदनाव्यय वासुदेव जगन्नाथ है, प्रणतार्ति विनाशन है, विश्वात्मन विश्वजनक विश्वहर्ता है, प्रभुव्यय है, प्रपन्न पाल गोपाल है, प्रजापाल परात्पर है, आकूतिनांच चित्तानां प्रवर्तक नतास्मिते वरेण्य वरदानंत अगति नाम गतिर्भव है, पुराण पुरुष प्राण मनोवृत्त्याज्ञ गोचर है, सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामहं शरणंगता पाही माम कृपया देव शरणागत वत्सल है, मेरी रक्षा करो, मैं प्रणाम करती हूं, साफ सबके साक्षी हो, मेरे हृदय के भाव को जानने वाले हो, संपूर्ण प्राणियों के आदि अंत मध्य आश्रय सब कुछ तुम ही तुम हो, इसलिए प्रभो मेरी पीड़ा को सुनो। द्रौपदी ने जब इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान की अंतर्मन से वेदना के साथ स्तुति की, भगवान का हृदय भर आया। भगवान ने देखा द्रौपदी पर फिर एक संकट आ गया है, वे अचिंत्य गति परमेश्वर तुरंत वहां पहुंचे। द्रौपदी को आया देख, भगवान को आया देखकर द्रौपदी के आश्चर्य और आनंद का कोई पार नहीं रहा। आ गए, द्रौपदी से कुछ कहा नहीं गया, प्रणाम करके देखिए कृष्ण बड़ी संकट की वेला है, दुर्वासा मुनि आए हैं, 10,000 शिष्यों के साथ, और महाराज ने उनको भोजन का निमंत्रण दिया है। हम सब ने भोजन कर लिया है, अब हमारे हंडिका में कुछ भोजन भी नहीं है, कहां से भोजन का प्रबंध करूं? और यदि भोजन का प्रबंध नहीं होगा तो दुर्वासा ऋषि कुशन को श्राप दे देंगे। हम तो वैसे ही बड़े संकट में हैं, ऐसे समय में दुर्वासा का श्राप हमारे संकट को और बढ़ाने वाला होगा। भगवान बोले, अरे तुम दुर्वासा की चिंता करती हो, मैं इतनी दूर से आया हूं, मैं भूखा हूं, पहले मुझे तो भोजन कराओ, बहुत भूख लगी है, खाने को दो, फिर सारा प्रबंध करते रहना। द्रौपदी बोली कि इसी के ऊपर तो आज सारी बात हो रही है, मुझे बड़ी लज्जा और शर्म का अनुभव हो रहा है कि भगवान सूर्य देव की दी हुई ये बटलोई तो तभी तक अन्न देती है जब तक मैं भोजन न कर लूं। आज मैं भी भोजन कर चुकी हूं, अब कुछ में नहीं है, कहां से लाऊं? आप भी क्या बात करते हो, आप भी भूखे आए हो। देखो द्रौपदी, तुम दूसरी बातें मत करो, मैं धूप के भूखे कारण से बहुत थक गया हूं, बड़ा कष्ट पा रहा हूं, तुम्हें हंसी सूझती है, सूर्यनारायण की बटलोई दिखती है, मुझे भोजन कराओ ना, ये हंसी का समय नहीं है, जल्दी जा बटलोई लाकर दे मुझे दे। इस प्रकार हट करके भगवान ने द्रौपदी से बटलोई मंगाई। कितना अपनापन भगवान के साथ, कह लो इस बटलोई में कुछ है तो, कुछ नहीं है इसमें तो, भगवान ने कहा ला दे, लेकर के भगवान उसमें देखे, उसमें उसके बटलोई के किनारे पर अंदर की तरफ जरा सा साग लगा हुआ था। भगवान कृष्ण ने उसको पत्ते को लिया, निकाला, देख इसमें है ना खाने के लिए। उसको साग को लेकर बोले, इस साग के द्वारा संपूर्ण जगत की आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त और संतुष्ट हो जाए। और डकार ले ली भगवान ने, भगवान ने सहदेव को बुलाया, सहदेव जल्दी करो, ऋषियों को निमंत्रण दो, भोजन के लिए बुला लाओ। आज्ञा पाते ही सहदेव दुर्वासा आदि मुनियों के पास गए, जो देव नदी में वहां स्नान करने के लिए गए थे। हे ऋषिवार, दुर्वासा जी महाराज, आप शिष्यों सहित पधारिए, आपका भोजन तैयार है। मुनि लोग पानी में खड़े होकर अग्निमर्शन कर रहे थे, आए थे पानी में, तब तो पेट था खाली, भूख थी, और अब अचानक उनको ऐसा लगा कि जैसे खूब तृप्ति हो गई है, मानो हम खूब भोजन कर चुके हैं, और बार बार उनके अन्न की डकारें आने लगी। जल से बाहर निकलकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्या बात है, भोजन करोगे? अरे काय का भोजन करे, हमारा पेट तो बिल्कुल भर गया, कि तुम्हारे मेरी भी यही दशा है। सबने जाकर दुर्वासा से कहा, महर से राजा को अन्न तैयार करने की आज्ञा देकर हम लोग यहां नहाने के लिए आए, पर इस समय तो इतनी तृप्ति हो गई है कि कंठ तक अन्न भरा हुआ है, कैसे भोजन करेंगे? हमने जो रसोई तैयार करवाई वह व्यर्थ हो जाएगी, क्या करना चाहिए? दुर्वासा जी बोले कि अरे सचमुच ऋषियों, आज तो बड़ी गलती हो गई, व्यर्थ ही भोजन बनवाकर हम लोगों ने इतने महान राजा युधिष्ठिर का अपराध किया है। ये राजर्षि युधिष्ठिर अम्बरीश से कम नहीं है, अरे अम्बरीश का प्रभाव तो अभी तक हमारे हृदय से उतरा ही नहीं है। जब से अम्बरीश के साथ हमारी घटना हुई, उसके बाद से तो मैं भगवान के भक्तों से सदा डरता रहता हूं। समस्त पांडव भी भगवान के भक्त हैं, ये बड़े धार्मिक शूरवीर विद्वान व्रतधारी तपस्वी सदाचारी और नित्य भगवान वासुदेव के भजन में लगे रहने वाले हैं। जैसे आग रुई के ढेर को जला डालती है, उसी प्रकार क्रोधित होने पर पांडव हमें जला सकते हैं। इसलिए शिष्यों ऋषियों, अब कल्याण इसी में ही है कि हम लोग पांडवों से बिना पूछे ही यहां से तुरंत भग चले। अपने गुरुदेव दुर्वासा मुनि की बात सुनकर भला शिष्य लोग कैसे ठहर सकते थे। पांडवों के भय से भागते गए, कह रहे गुरु जी क्या करें, भगा भी तो नहीं जाता है, खूब पेट में, अरे भगो यहां से, भगो यहां से, सहदेव कहीं दोबारा न आ जाए। सहदेव ने जब जाकर गंगा नदी के पास में जाकर देखा तो वहां ऋषि मुनि में एक भी नहीं दिया, वो पीछे पीछे दौड़ने लगा। ऋषियों कहां गए, दुर्वासा जी कहां हैं, मैं आपको इस वन में कहां ढूंढूं। आसपास के घाट वगैरह वृक्षों के झुरमुट सब जगह खोजने लगे। फिर वहां कई तपस्वियों ने बताया कि सहदेव वो तो भाग गए, भाग गए। तब युधिष्ठिर के पास आकर कहने लगे, महाराज हमें तपस्वियों से मालूम हुआ है 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा जी तो भग करके चले गए। हाँ ऐसा सुना। तत्पश्चात जितेंद्रिय पांडव पुनः लौट आने की आशा से कई देर तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। दुर्वासा है क्या पता कब आए, मुनि आधी रात के बाद भी अचानक आ सकते हैं और कह सकते हैं हमने भोजन के लिए कहा था ना, तब हम क्या कहेंगे। यह दैवश हम लोग पर बड़ा संकट आ गया, हमारा उद्धार कैसे होगा। ऐसी चिंता कर रहे थे तो भगवान कृष्ण ने कहा, पांडवों परम क्रोधी दुर्वासा मुनि से आप लोगों पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, यह जानकर ही तो द्रौपदी ने मेरा स्मरण किया और मैं तुरंत आ गया। अब आप लोगों को दुर्वासा से तनिक भी भय नहीं है, वे आपके तेज के डर से भाग चले गए। जो सदा धर्म में तत्पर रहते हैं वे दुख में नहीं गिरा करते। अब आप लोगों से जाने के लिए आज्ञा चाहता हूं, आप लोगों का कल्याण हो। भगवान की बात सुनकर द्रौपदी सहित पांडवों की घबराहट दूर हो गई और वे बोले, गोविंद तुम्हें ही अपना रक्षक पाकर हम बड़ी बड़ी विपत्तियों से पार हुए हैं। द्रौपदी, जैसे महासागर में डूबते हुए को जहाज मिल जाए उसी प्रकार तुम हमें सहायक मिल गए। अब जाओ, और भी आपके बहुत से भक्त हैं, सबके कल्याण में लगे रहो। द्रौपदी ने बहुत प्रेम से भगवान को विदा किया और फिर पांडव प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। एक समय की बात है, पांडव लोग वन में घूम रहे थे, द्रौपदी को अपने आश्रम पर अकेली छोड़ गए और धौम्य की आज्ञा से ब्राह्मणों के लिए भोजन के प्रबंध में वन में चले गए। उसी समय में सिंधु देश का राजा जयद्रथ, जो वृहत क्षत्र का पुत्र था, विवाह की इच्छा से साल्व देश की ओर जा रहा था।